शागिर्द। तो चलिए कहानी शुरू करें। तीन शागिर्द। सन 1895 का वाक्य था, जब संयोगवश मुझे और शेरलक होम को अपने देश की यूनिवर्सिटी के इलाके में कुछ हफ्ते गुजारने पड़े थे। उस दौरान की एक छोटा सा किंतु बहुत ही रोचक अभियान हमारे सामने आया, जिसका कि मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। उन दिनों हम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के निकट एक सुसज्जित आवास में रह रहे थे। एक शाम मिस्टर सोमेस नाम एक परिचित हमसे मिलने के लिए आया, जो कि कॉलेज ऑफ सेंट क्लूक के लेक्चरर था। मिस्टर सोमेस एक लंबा और नर्वस किस्म का जल्दी उत्तेजित हो जाने वाला व्यक्ति था। मैं उसे हमेशा ही बेचैन देखता था, मगर उस दिन तो वह ऐसा बेचैन और परेशान था कि अपने आपे में नहीं लग रहा था। साफ मालूम होता था कि उसके साथ कोई ना कोई अप्रत्याशित घटना जरूर घटी है। मुझे विश्वास है मिस्टर होम कि आप मुझे अपने कीमती वक्त में से कुछ घंटे अवश्य देंगे। हमारे कॉलेज में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घट गई है। यह तो मेरा सौभाग्य है कि इस मौके पर आप यहाँ हैं, वरना मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। इस वक्त तो मैं बहुत व्यस्त हूँ और किसी किस्म का व्यवधान नहीं चाहता, मेरे मित्र ने जवाब दिया। मैं चाहूँगा कि आप मेरे बजाय पुलिस की सहायता लें तो ज़्यादा उचित होगा। नहीं 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 जनाब, ऐसा करना तो एकदम असंभव है, वह लेक्चर बेचैनी के साथ बोला। एक बार अगर पुलिस को बुला लिया तो फिर इस खबर को फैलने से ना बचाया जा सकेगा। कॉलेज की इज्जत की खातिर इस खबर को दबाना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई स्कैंडल ना होने पाए। आप सिर्फ एक माने हुए जासूस ही नहीं, बल्कि एक समझदार सच्चे इंसान भी हैं। इसलिए दुनिया में सिर्फ आप ही अकेले ऐसे आदमी हैं जो इस वक्त मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ मिस्टर होम्स की, आप मेरी मदद करें। लेकिन मेरे दोस्त के मूड में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वह अपने बेकर स्ट्रीट वाले चिर परिचित परिवेश से दूर था, जहाँ ना उसकी नोटबुक थी ना उसके केमिकल थे जिसके बिना वह आधा अधूरा था। इसलिए उसने लाचारी के साथ अपने कंधे झटक दिए, जबकि वह लेक्चर अपनी उत्तेजित सी अवस्था में जल्दी जल्दी बोलता हुआ अपनी कहानी सुनाने में लग गया। मैं आपको सारा किस्सा बताता हूँ मिस्टर होम्स। कल फोर्टिस्कू स्कॉलरशिप की पहली परीक्षा है, परीक्षक में से एक मैं भी हूँ। मेरा सब्जेक्ट ग्रीक भाषा है और पहले पर्चे में ही ग्रीक अनुवाद का एक बड़ा अध्याय है जो किसी कैंडिडेट ने नहीं देखा हुआ है। लेकिन इस बात का आप भली प्रकार अनुमान लगा सकते हैं कि अगर एग्जामिनेशन पेपर की छपे इस अध्याय का पता किसी विद्यार्थी को पहले से लग जाए तो उसे तैयारी करने में आसानी होगी। इसीलिए पेपर्स को बड़ी सावधानी के साथ छुपा कर रखा जाता है। आज लगभग 3 बजे प्रिंटर के यहाँ से इस पेपर से के प्रूफ आए। मुझे उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक और सावधानी के साथ पढ़ना था, ताकि कहीं भी किसी प्रकार की कोई गलती या अशुद्धि ना रह जाए। 4:30 बजे तक भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने उस वक्त अपने एक दोस्त के साथ चाय पीने का वादा किया हुआ था, लिहाजा मैं वह प्रूफ अपने डेस्क पर रख कर चला गया। लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक मैं अपने दोस्त के साथ रहा और वह पेपर उसी डेस्क पर ही पड़े रहे। आप तो जानते ही हैं मिस्टर होम्स कि हमारे कॉलेज में दरवाजे डबल लगे हुए हैं। जब मैं लौट कर बाहरी दरवाजे के पास पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसमें एक चाबी लगी हुई है। एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा कि शायद मैं अपनी चाबी लगी भूल गया, मगर अपनी जेब में देखी तो मेरी चाबी वहाँ मौजूद थी। यहाँ जहाँ तक मैं जानता हूँ दूसरी चाबी मेरे नौकर बनिस्टर के पास है, जो कि पिछले 10 साल से मेरी देखभाल कर रहा था तथा बड़े भरोसे का आदमी था। उसकी ईमानदारी पर किसी प्रकार का भी कोई शक नहीं किया जा सकता। मुझे पता चला कि चाबी उसी की है और वह मेरे कमरे में चाय लेकर आया था, और बाहर निकलते समय वह असावधानी में अपनी चाबी दरवाजे में ही लगी छोड़ गया। उसकी यह असावधानी पहले मौके पर महत्वहीन समझकर नज़रअंदाज कर दी जाती थी, क्योंकि उसने आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन आज के दिन तो उसकी इस जरा सी भूल ने बड़े ही पेचीदे हालात पैदा कर दिए हैं। जिस क्षण मेरी नज़र पड़ी उसी क्षण मुझे पता चल गया कि किसी ने मेरे कागजों को छेड़ा है। सबूत के तौर पर वे 3 लंबी पर्चियां जिन्हें मैं वहां अच्छी तरह से रख कर गया था बिखरी हुई थी। उनमें से एक फर्श पर पड़ी थी, एक खिड़की की साइड वाली मेज पर और तीसरी वहीं थी जहां मैं छोड़ कर गया था। होम्स ने पहली बार हरकत की। तुम्हारा कहने का मतलब है पहली पर्ची फर्श पर पड़ी थी, दूसरी खिड़की की साइड वाली मेज पर और तीसरी वहीं थी जहां तुम छोड़ कर गए थे, उसने पूछा। बिल्कुल ऐसा ही था मिस्टर होम्स, आपने तो मुझे हैरान कर दिया। कैसे जान लिया आपने यह सब? उसे छोड़िए और अपनी दिलचस्प कहानी को चालू रखिए। एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा कि शायद बेनिस्टर ने मेरे कागजों को देखने और उसे छेड़छाड़ करने का अक्षम्य अपराध किया, लेकिन उसने इस आरोप से दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया और मुझे इस बात का यकीन है कि वह सच बोल रहा है। इस हालत में यदि सोचा जा सकता है कि कोई उधर से गुजर रहा था और उसे चाबी दरवाजे में लगी दिखाई दी। उसे यह भी मालूम था कि मैं बाहर गया हूँ, बस वह अंदर घुसा और उसने एग्जामिनेशन पेपर की उन पर्चियों को देखा। यह स्कॉलरशिप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत मोटी रकम दाव पर लगी हुई थी, इसलिए कोई भी बेईमान किस्म का व्यक्ति अपने साथी से आगे रहने के लिए हर किस्म का खतरा उठा सकता है। इस घटना से बेनिस्टर बेहद परेशान हो गया था जब उसे इस बात का पता चला कि प्रश्न पत्रों से किसी किस्म की छेड़छाड़ की गई है और वह दोषी उसे समझा जा रहा है, तो वह लगभग बेहोश सा ही हो गया। फिर उसे थोड़ी सी ब्रांडी दी और एक कुर्सी पर उसे निढाल सा पड़ा छोड़कर मैं कमरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। जल्दी ही मुझे मालूम हो गया कि कमरे में अनुचित ढंग से घुसने वाले घुसपैठिए ने बिखरे हुए पेपर के अलावा अपनी उपस्थिति के कुछ और भी निशान छोड़े हैं। खिड़की के पास टेबल पर पेंसिल की तेज करने की कोशिश की गई थी क्योंकि वहां पेंसिल की लकड़ी के छिलके पड़े हुए थे, लीड का टुकड़ा भी वहां पड़ा हुआ था। साफ जाहिर है कि उस बदमाश ने जल्दी जल्दी प्रश्न पत्र की कॉपी करने की कोशिश की थी और इस चक्कर में उसकी पेंसिल की नोक टूट गई और उसे पेंसिल फिर से छीलने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहुत खूब, ज्यों ज्यों होम्स की इस केस की दिलचस्पी बढ़ती गई त्यों त्यों उसका खोया उत्साह वापस लौटने लगा। वह बोला, लगता है तुम्हारे भाग्य तुम पर बहुत मेहरबान है। तभी उसने, आगे भी तो सुनिए, मिस्टर सोमेस ने अपने आवेश में कहा। मैंने लिखने की एक नई मेज खरीदी है जिसकी सतह पर बहुत अच्छी किस्म का लाल चमड़ा चढ़ा हुआ है, मुझे मालूम है और बेनिस्टर ने भी यही बात कसम खाकर कही कि चमड़े की वह सतह इतनी साफ और बेदाग थी, उस पर कोई मामूली सा धब्बा तक नहीं था, कोई स्क्रैच भी नहीं था, लेकिन अब उसमें 3 इंच लंबा एक क्लीन कट लगा हुआ था। सिर्फ यही नहीं, मेज पर कुछ काली मिट्टी की एक गेंद सी मिली जिसमें बुरादे की चित्तियाँ सी चपकी हुई थी। मुझे यकीन है कि यह सब चिन्ह उसी व्यक्ति ने छोड़े हैं जिसने उन कागजों के साथ छेड़छाड़ की है। उसके अलावा ना कोई आदमी कदमों के निशान मिले, ना ही कोई चिन्ह जिससे उस घुसपैठिए के बारे में कुछ मालूम हो सकता। मैं उस समय निराशा के गहरे समुंदर में डूबा हुआ था कि जब सौभाग्य से मुझे अचानक याद आया कि आप इन दिनों इसी शहर में ठहरे हुए हैं, सो मैं इस उम्मीद के साथ सीधा आपके पास चला आया और आप मेरी मदद जरूर करें, आप मेरी मुश्किल को समझ सकते हैं मिस्टर होम्स। या तो उस बदमाश को सिंगरी पता लग जाए या इन इम्तिहानों को आगे के लिए टाल दिया जाए जब तक कि नया पेपर तैयार नहीं हो जाता, मगर यह काम बिना अपनी सफाई दिए नहीं किया जा सकता। यह भी हो सकता है कि इतनी सी बात को एक बहुत बड़े स्कैंडल का रूप दे दिया जाए, यदि ऐसा हुआ तो मेरी ही नहीं पूरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बदनामी होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारा मामला बड़ी खामोशी के साथ सुलझ जाए और यह काम आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। मुझे आपकी मदद करने में खुशी महसूस होगी, होम्स ने खड़े होकर अपना ओवरकोट पहनते हुए कहा। वैसे भी यह केस बेहद दिलचस्प है, जब प्रश्न पत्रों के प्रूफ आपके पास आए थे तो उस समय क्या कोई आपसे मिलने के लिए उस कमरे में आया था? जी हाँ जी हाँ, राम नाम का एक नौजवान विद्यार्थी जो कि हिंदुस्तानी है मुझसे एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बात करने के लिए आया था, वह भी एक स्कॉलरशिप का इम्तिहान दे रहा है। जी हाँ, उस समय प्रश्न पत्र आपकी मेज पर रखे थे? जहाँ तक मुझे यकीन है वे उस समय रोल किए हुए थे, लेकिन यह पहचाना जा सकता है कि वे प्रूफ हैं शायद। और कोई भी आपके कमरे में आया था?
बिल्कुल नहीं।
क्या किसी को मालूम था कि एग्जाम पेपर के प्रूफ आने वाले हैं आपके पास?
प्रिंटर के अलावा किसी को मालूम नहीं था।
क्या आपके नौकर बेनिस्टर को यह बात पता थी?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
बेनिस्टर इस वक्त कहाँ है?
उस बेचारे की तो बहुत बुरी हालत हो रही है।
मुझे आपके पास आने की जल्दी थी, इसलिए मैं उसे एक कुर्सी पर निढाल सा पड़ा छोड़कर आ गया।
इसका मतलब है कि तुम अपने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ा है?
लेकिन आने से पहले मैंने पेपर्स को ताले में बंद कर दिया था।
तुम्हारे बयान से यह नतीजा निकलता है कि मिस्टर सोमेश की, अगर उस हिंदुस्तानी स्टूडेंट ने उस रोल को एग्जामिनेशन पेपर के प्रूफ के रूप में नहीं पहचाना, तो जिस आदमी ने भी उसे छेड़छाड़ की है वह केवल संजोगवश ही नहीं उन तक पहुंच गया, होम्स बोला, बिना यह जाने कि वह वहाँ मौजूद है।
मुझे कुछ ऐसा लगता है, सोमेश ने प्रत्युत्तर से कहा।
ठीक है, होम्स ने कहा,
चल कर देखते हैं। यह एक ऐसा केस है वॉटसन कि जिसमें तुम्हारी शारीरिक ताकत की कोई ज़रूरत नहीं, इसे हल करने के लिए दिमागी ताकत की ज़रूरत है। फिर भी तुम साथ चलना चाहो तो चल सकते हो।
लेकिन मिस्टर सोमेश, अब मैं आपके साथ हूँ।
हमारे क्लाइंट के सिटिंग रूम की एक खिड़की उस पुराने कॉलेज के एक शिवाल युक्त मैदान की ओर खुलती थी। एक मेहराबदार दरवाजे से होकर हम पत्थर की घिसी पुरानी सीढ़ियों तक पहुँचे। ग्राउंड फ्लोर पर लेक्चर का कमरा था, उससे ऊपर तीन विद्यार्थियों के कमरे थे, एक के ऊपर एक बने हुए थे। उस समय छुटपुटा घिर आया था जब हम वास्तविक घटनास्थल तक पहुँचे। अचानक होम्स रुका और उसने खिड़की की तरफ गौर से देखा, फिर वो उसके निकट पहुंचा और पंजों के बल खड़े होकर तथा अपनी गर्दन की सारस की तरह लंबी करते हुए उस कमरे के भीतर झाँका। वह निश्चिंत रूप से दरवाजे से ही दाखिल हुआ होगा, मिस्टर सोमेश ने कहा, क्योंकि इधर तो कोई सुराग तक नहीं है सिवाय उस टूटे हुए कांच के।
शायद आप ठीक कह रहे हैं, होम्स ने कहा, लेकिन कहते समय वह हमारी साथी की तरफ एक उचटती सी निगाह डालता हुआ बड़ी रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, अगर यहाँ से कुछ नहीं जाना जा सकता तो फिर तो भीतर चलना ही बेहतर है।
लेक्चरर ने बाहरी ताला खोला और उसे अपने कमरे में ले आया। हम अभी प्रवेश द्वार पर ही थे जब होम्स ने फर्श पर बिछी कारपेट का गहराई से निरीक्षण किया।
इस पर तो किसी प्रकार का कोई निशान नहीं, होम्स ने कहा,
बरसात का दिन होता तो निशान जरूर पड़ते, लेकिन ऐसे खुले मौसम में मुझे किसी किस्म के निशान मिलने की उम्मीद भी नहीं थी।
तुम्हारा नौकर नहीं दिखाई दे रहा?
लगता है उसकी हालत संभल गई और वह यहाँ से चला गया।
तुम उसे एक कुर्सी पर छोड़ गए थे ना,
यही बताया था ना तुमने?
कौन सी कुर्सी?
वहाँ उस खिड़की के पास।
समझा, इस छोटी सी मेज के पास। अब तुम लोग आ जाओ, मैंने कारपेट का निरीक्षण कर लिया है। पहले हम मेज को ही देखते हैं, जो कुछ भी यहाँ हुआ वह सब मुझे साफ दिखाई दे रहा है। वह घुसपैठिया कमरे में आया और उसने बीच की मेज पर से पेपर उठाए एक एक करके और उन्हें खिड़की के निकट ले गया, क्योंकि वहाँ से वह तुम्हें मैदान में से आते हुए देख सकता था और समय रहते भाग सकता था।
सच बात तो यह है कि वह मुझे देख नहीं सकता था, सोमेश ने कहा, क्योंकि मैं साइड के दरवाजे से आया था।
ओह, यह बात है।
खैर, फिर भी खिड़की के पास खड़े होने के पीछे उसका उद्देश्य यही था। पर्चियों पर उंगलियों के निशान नज़र नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, पर पहले इस पर्ची को वहाँ से ले गया और उसकी नकल की। इसकी नकल करने में उसे कम से कम 15 मिनट का समय तो लगा ही होगा। तब उसने इसे फेंका और दूसरी पर्ची उठाकर उसकी नकल करने लगा। वो उसकी नकल कर ही रहा था कि तुम्हारी वापसी ने उसे जल्दी से भागने पर मजबूर कर दिया। उसे इतनी जल्दी के साथ भागने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उसे पर्चियों को पहले जैसी स्थिति में रखने का मौका नहीं मिला और इस तरह तुम्हें उसकी उपस्थिति का पता चला। वैसे जब तुम बाहरी दरवाजे के अंदर घुसे तो तुम्हें किसी के तेजी के साथ सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज़ तो नहीं सुनाई दी थी?
नहीं नहीं नहीं, लगता है कि मैंने कोई आवाज़ सुनी हो।
खैर, वह इतनी तेज़ी के साथ लिख रहा था कि उसकी पेंसिल टूट गई और जैसा कि छिलकों को देखकर तुमने भी अनुमान लगाया था कि उसने उसे फिर छिलाया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वह पेंसिल साधारण पेंसिल नहीं थी, आम पेंसिलों से काफ़ी बड़ी थी और उसका सिक्का बहुत नरम था। सुनहरे अक्षरों में बनाने वाली कंपनी का नाम छपा था।
उसकी लकड़ी पर नीला रंग पुता हुआ था और इस्तेमाल करते रहने के कारण उसका जो टुकड़ा बचा था वह कुछ 1.5 इंच लंबा था। इस तरह की पेंसिल की तलाश करो मिस्टर सोमेस, फिर तुम्हें तुम्हारा मुजरिम मिल जाएगा। तुम्हारी तलाश को मैं और भी ज़्यादा आसान कर देता हूँ, यह बताकर कि जिस चाकू से उस आदमी ने वह पेंसिल छीली है वह काफ़ी बड़ा है और उसकी धार भी बहुत तेज नहीं है। इस ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन से सोमेस कुछ चमकृत सा हो गया। मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ, वह विस्मित स्वर में बोला, मगर इतनी जरा सी देर में आपने इतना सब कुछ कैसे जान लिया? होम्स ने छोटा सा छिलका उसे दिखाते हुए कहा। क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखना चाहिए मुझे? पलटकर सोमेश ने सवाल किया। वॉटसन, उसे संबोधित करने के बजाय होम्स ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, NN के ये दो अक्षर जो लिखे हुए हैं इनका क्या मतलब हो सकता है? तुम्हें शायद मालूम होगा, पेंसिल निर्माताओं में जॉन फेवर का नाम सब लोग जानते हैं। विशिष्टता की खातिर वह जॉन में डबल N लगाता है। क्या इस छिलके को देखकर यह स्पष्ट अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस डबल N की समाप्ति के बाद कितनी बड़ी पेंसिल बची होगी? उसने छोटी टेबल का थोड़ा सा बिजली की रोशनी की ओर सरकाया। मैं सोच रहा हूँ कि जिस कागज़ पर वह लिख रहा था अगर वह पतला होता तो इस मेज की पॉलिश की हुई सतह पर उसके दबाव का कोई ना कोई निशान जरूर होता, मगर उस पर मुझे ऐसा कोई निशान नज़र नहीं आया। मेरा ख्याल है कि जहाँ अब उसने ज़्यादा कोई जानकारी नहीं मिल सकती। अब उस बीच वाली मेज को देखते हैं। इस पिरामिड जैसी आकृति के छोटे से मिट्टी के ढेले के बारे में जो तुमने मुझे बताया था उसी के मुताबिक इस पर बुरादे के कण भी चिपके हुए हैं। वाह, क्या बात है, यह तो बड़ी दिलचस्प बात है। और यह मेज पर मढ़े चमड़े में जो चीरा लगा है, जो शुरू से जरा स्क्रेच है और बाद में चीरा सा लगकर बिल्कुल कट गया है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ मिस्टर सोमेश कि आपकी वजह से मुझे इस बेहद दिलचस्प केस पर काम करने का मौका हाथ लगा है। इस दरवाजे के पीछे क्या है? मेरा बेडरूम। यह घटना घटने के बाद क्या तुम अपने बेडरूम में गए थे? नहीं नहीं, मैं तो फौरन आपके पास पहुंच गया था। मैं तुम्हारे बेडरूम को एक नज़र देखना चाहता हूँ, होम्स ने कहा और फिर बेडरूम में घुसकर बोला, क्या खूबसूरत और पुराने ब्रिटिश अंदाज का बेडरूम है। मैं जब तक इसके फर्श का निरीक्षण ना कर लूँ तब तक आप लोग कृपा करके बाहर रहिए। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, आ जाइए आप लोग। इस पर्दे के पीछे क्या है? तुम शायद इसके पीछे अपने कपड़े टांगते हो। अगर किसी आदमी को इस कमरे में छुपने के लिए मजबूर होना पड़े तो वह निश्चित रूप से इसके पीछे ही छिपेगा, क्योंकि तुम्हारा पलंग बहुत नीचा है और अलमारी में भी खड़े होने की जगह नहीं। मगर इस वक्त पर्दे के पीछे कोई नहीं होगा। तभी होम्स ने वह पर्दा खींच दिया। उसके पीछे कोई छुपा हुआ नहीं था, बस खुट्टियों पर कुछ कपड़े टंगे हुए थे। तभी वह मुड़ा और अचानक फर्श की ओर झुका। अरे वाह, यह क्या है? वह बोला। वह एक काली मिट्टी का पिरामिड जैसा ही ढेला है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि स्टडी रूम की मेज पर रखा है। होम्स ने उसे अपनी हथेली पर रखकर बिजली की रोशनी दिखाई। तुम्हारे सेटिंग रूम के साथ साथ बेडरूम में भी घुसपुटिए ने अपनी उपस्थिति का निशान छोड़े हैं मिस्टर सोमेश, होम्स ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मेरे बेडरूम में उसे किस चीज़ की तलाश हो सकती है? इस बात का तो मैं भले से स्पष्ट कर चुका हूँ, तुम एक दूसरे रास्ते से वापस लौट कर आए, इसलिए उसे तुम्हारे आने का तब तक पता ना चल सका जब तक कि तुम ठीक दरवाजे पर नहीं पहुँच गए। ऐसी हालत में वह इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता था कि वह फुर्ती के साथ तुम्हारे बेडरूम में घुसकर स्वयं को छुपा ले। ओह माय गॉड मिस्टर होम्स, आप यह कहना चाहते हैं कि जिस दौरान मैं इस कमरे में बेनिस्टर के साथ बात कर रहा था उस दौरान वो आदमी मेरे बेडरूम में छुपा था? अगर मुझे मालूम होता तो उसे तभी मैंने पकड़ लिया होता। होम्स ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल से उस आदमी के पास एक और विकल्प भी था मिस्टर होम्स, सोमेश ने कुछ सोच कर कहा। मैं नहीं जानता कि आपने मेरे बेडरूम की खिड़की पर गौर किया है या नहीं। देख लिया है मैंने, उसका एक पल्ला कब्जों पर झूल रहा है और उसमें से कोई भी आदमी आसानी से आ जा सकता है। यही बात मैं कहना चाहता था, मिस्टर सोमेश ने अपने शब्दों पर बल देते हुए कहा। वह खिड़की है भी ऐसे कोण पर कि कोर्टयार्ड यानी बाहरी मैदान की तरफ पूरी दिखाई भी नहीं देती। मेरा ख्याल है कि वह घुसपैठिया उस खिड़की के रास्ते ही अंदर घुसा होगा और बेडरूम से होता हुआ सिटिंग रूम। नहीं, होम्स ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, यह मामला नहीं है। मुझे याद है कि तुमने कहा था कि उसी इमारत में 3 शागिर्द यानी विद्यार्थी भी रहते हैं और अपने कमरे तक जाने वाली सीढ़ियों तक आने जाने के लिए उन्हें तुम्हारे दरवाजे से गुजरना पड़ता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। क्या वे तीनों विद्यार्थी इस स्कॉलरशिप वाली परीक्षा में शामिल हैं? जी हाँ। क्या तुम्हें उनमें से किसी एक पर दूसरे के अपेक्षा कुछ ज़्यादा शक तो नहीं? इस सवाल पर सोमेश कुछ हिचकिचाया सा वह बोला, यह बहुत नाजुक सवाल है। वह बोला, मैं समझता हूँ कि जब तक कोई सबूत हाथ में ना लगे तब तक किसी पर भी शक करना मुनासिब नहीं है। तुम अपने शक के बारे में बताओ। बहुत तो मैं खुद तलाश कर लूँगा। ठीक है, मैं आपको कम से कम शब्दों के ऊपर के कमरे में रहने वाले तीनों विद्यार्थियों के चरित्र के बारे में बताए देता हूँ। उसके बाद आप ही फैसला कर लीजिए कि कौन कैसा है। पहली मंजिल पर तो गिलक्रिस्ट रहता है। वह एक होनहार विद्यार्थी ही नहीं बल्कि एक अच्छा एथलेटिक भी है। कॉलेज की रग्बी टीम और क्रिकेट टीम में खेलता है। लॉन्ग जंप और हर्डल रेस में भी उसने कोई इनाम जीते हैं। वह एक पुरुषोचित व्यक्ति वाला अच्छा आदमी है, लेकिन उसका बाप बड़ा ही बदनाम तथा जुएबाज था। रेस के मैदान में अपना सब कुछ लुटाकर दाने दाने को मोहताज हो गया था। यह होनहार विद्यार्थी उसी बदनाम सर जावेद क्रिस्टल का पुत्र है, जिसने अपना सब कुछ गंवाकर बेटे को घोर गरीबी के अंधेरे में धकेल दिया। मगर वह है बहुत समझदार और मेहनती। मुझे उम्मीद है कि वह जीवन में बहुत तरक्की करेगा। अच्छा, अब दो अन्य के बारे में बताओ। दूसरी मंजिल पर एक इंडियन डी राम रहता है। बहुत ही खामोश और अपने काम में गुम रहने वाला। सारे इंडियन ही ऐसे होते हैं, मगर डी राम भी बड़ा मेहनती और होशियार है। सारे सब्जेक्टों में माहिर है, बस उसकी ग्रीस भाषा थोड़ी कमज़ोर है। वैसे आदमी दृढ़ निश्चय और तरीके से काम करने वाला है। अब तीसरे का नाम माइल्स मैकलॉरेंस है। वह सबसे ऊपर की मंजिल में रहता है। बहुत ही प्रतिभाशाली और मेहनती आदमी है। अगर किसी काम में लग जाए तो तब तक भूत की तरह जुटा रहता है जब तक कि काम खत्म ना हो जाए। बस एक ही खराबी है कि सड़क छाप आवारागर्द छोकरों जैसा गैर जिम्मेदार है। उन आदतों की वजह से तो एक बार उसे कॉलेज से निकाल देने तक की नौबत आ गई। इतना गैर जिम्मेदार है कि अपने पर आ जाए तो दो महीने तक किताब को हाथ नहीं लगाएगा। इसलिए इस एग्जाम को लेकर वह कुछ परेशान सा है। इसका मतलब है कि तुम्हारा शक पूरी तरह उसी पर है? नहीं नहीं, मैं यह नहीं कह रहा, लेकिन इन तीनों में वही कुछ थोड़ा सा अलग किस्म का है। तो यह बात है। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल तो मिस्टर सोमेश मैं तुम्हारे नौकर बेनिस्टर से मिलना पसंद करूँगा। बेनिस्टर को बुलाया गया। वह उलझे हुए बालों वाला लगभग 50 साल का एक ऐसा व्यक्ति था जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और दाढ़ी मूछ साफ थी। वह दैनिक दिनचर्या में आई हुई उस भयानक गड़बड़ से अभी परेशान था। उसके चेहरे पर अभी भी परेशानी के भाव प्रलक्षित थे और उसके हाथ की उंगलियां बेचैनी से कांप रही थी। हम लोग उस दुखद कांड की ही छानबीन कर रहे हैं बनिस्टर, मिस्टर सोमेश ने कहा। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमसे जो कुछ भी पूछा जाए सही सही जवाब देना, समझे तुम? यस सर। मुझे पता चला है कि तुम अपनी चाबी दरवाजे में लगी भूल गए थे, होम्स ने पूछा। क्या यह बात सच है? यस सर। क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं कि तुमने यह भूल ठीक उसी दिन की जब वह महत्वपूर्ण पेपर उस कमरे में है? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी सर, मगर ऐसी भूल मुझसे पहले भी कई बार हुई है। तुम कमरे में कितने बजे दाखिल हुए? तकरीबन 4:30 बजे। मैं मिस्टर सोमेश के लिए चाय लेकर आया था। तुम कमरे में कितनी देर रहे? जब मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं है तो मैं फ़ौरन ही बाहर निकल गया। क्या तुमने मेज पर रखे उन पेपर को देखा था? नहीं सर, कतई नहीं। दरवाजे पर लगी चाबी को तुम कैसे भूल गए? मेरे हाथ में चाय की ट्रे थी। मैंने सोचा कि लौट कर चाबी निकाल लूँगा, मगर बाद में मैं भूल गया। क्या बाहरी दरवाजे में स्प्रिंग लॉक लगा हुआ था? नहीं सर, तब तो हर वक्त खुला ही रहता है। यस सर। कमरे में से कोई भी आराम से बाहर जा सकता है, इसका यही मतलब हुआ ना कि कमरे से बाहर निकलने के लिए उसे चाबी की ज़रूरत नहीं है? यस सर। मिस्टर सोमेश ने लौटने के बाद जब तुम्हें बुलाकर पूछा कि तब तो तुम बड़े परेशान हुए होंगे? यस सर। इतने सालों से मैं यहाँ हूँ, लेकिन ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई। इनकी बात सुनकर मुझे तो गस आ गया था। जब तुम्हें गस आने लगा उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं तो यहीं दरवाजे के पास ही था, क्योंकि तुम तो सामने के कोने वाली कुर्सी पर जाकर बैठे थे। फिर ये बीच में जो कुर्सियाँ थीं, तुम इनमें से किसी एक पर क्यों नहीं बैठ गए? मुझे नहीं मालूम, मैं वहाँ जाकर क्यों बैठ गया? इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता होम्स कि यह कहाँ बैठा, मिस्टर सोमेश ने कहा। यह बेचारा उस वक्त अपनी शुद्ध बुद्ध खोए हुए था। मिस्टर सोमेश के यहाँ से जाने के बाद भी तुम यहाँ रुके थे? होम्स ने मिस्टर सोमेश की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। बाद में कितनी देर रुके थे? ज़्यादा नहीं, यही कोई एक मिनट के आसपास। उसके बाद मैंने दरवाजे में ताला लगाया और अपने कमरे में चला गया। तुम्हें किसी पर शक है? नहीं सर, मुझे यकीन नहीं आता कि इस यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी व्यक्ति अपने छोटे से वायदे के लिए ऐसी बेहुदा और घटिया हरकत कर सकता है। कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, होम्स ने कहा। लेकिन थोड़ा रुको, इस पूरे मामले के बारे में तुम्हारी ऊपरी मंजिल पर रहने वाले विद्यार्थी से कोई बातचीत नहीं हुई? बिल्कुल नहीं सर, इस बारे में मैंने किसी से कोई बातचीत नहीं की। तुम उन तीनों में से किसी से मिले भी नहीं? नहीं सर। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। आइए मिस्टर सोमेश, हम लोग बाहर कोर्टयार्ड में चलकर जरा चहलकदमी करते हैं। रात के घिरते हुए अंधेरे में रोशनी के तीन चौकड़े टुकड़े ऊपर की मंजिल पर चमकते नजर आए। तुम्हारे तीनों पंछी अपने घोंसले में हैं, होम्स ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा। अरे ये क्या, लगता है इनमें से एक तो कुछ ज़्यादा ही बेचैन है। यह वही हिंदुस्तानी था जिसकी प्रतिछाया खिड़की पर पड़ रही थी। वह तेजी के साथ अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। मैं इन तीनों से मिलना चाहता हूँ मिस्टर सोमेश, होम्स ने कहा, लेकिन इन्हें हमारे नाम काम के बारे में कुछ न बताया जाए। जी ठीक है, आप आइए मेरे साथ, सोमेश ने कहा और हम उसके साथ चल दिए। हमने पहले क्रिस्टल के दरवाजे पर दस्तक दी, जो एक लंबे और दुबले से युवक ने दरवाज़ा खोला और मिस्टर सोमेश को देखकर अंदर आने का निमंत्रण दिया। उसके कमरे में मध्ययुगीन बर्तनों की कुछ अंतकृतियाँ रखी हुई थी। उन्हीं में से एक पर होम्स मोहित हो गया था और अपनी नोटबुक में उसका डिजाइन उतारने लगा, लेकिन ड्राइंग करते समय उसकी पेंसिल टूट गई तो उसने क्लिटर से उसकी पेंसिल उधार मांगी और फिर चलने से पहले उसने अपनी पेंसिल की नोक बनाने के लिए चाकू भी मांगा। यह किस्सा उस इंडियन स्टूडेंट के कमरे में भी दोहराया गया, जो कि एक खामोश किस्म का मुड़ी हुई नाक वाला व्यक्ति था। वह खामोशी के साथ तिरछी नज़रों से हमें देखता रहा और उस समय वाकई खुश सा दिखाई दिया जब होम्स का काम उसे ख़त्म होता दिखाई दिया। मैं नहीं कह सकता हूँ कि इन दोनों मामलों में से किसी में भी होम्स को वहाँ कोई सुराग मिला हो जिसकी उसे तलाश थी। तीसरे दरवाजे पर गए तो नया तजुर्बा हुआ। हमारी दस्तक के जवाब में वह दरवाज़ा नहीं खोला, बल्कि उसके पीछे से भद्दी से गालियां देती हुई एक गुसेल सी आवाज़ आती हुई सुनाई दी। मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, पर जो भी कोई हो यहाँ से फौरन दफा हो जाओ, कल एग्जाम है इसलिए मुझे एक मिनट की भी फुर्सत नहीं है। और हम वहाँ से लौट पड़े। बड़ा ही बदतमीज आदमी है, मिस्टर सोमेश ने सफाई सी देते हुए हमारे साथ सीढ़ियों पर से उतरते हुए कहा। यह ठीक है कि उसे यह नहीं मालूम था कि दस्तक मैंने दी है, अपना कोई दोस्त समझा होगा वह, लेकिन फिर भी उसे इस बेहुदा ढंग से बात नहीं करनी चाहिए। इस हालात में उसका यह व्यवहार संदेहजनक है, मगर होम्स की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक थी। क्या तुम मुझे उसकी सही कद बता सकते हो, उसने पूछा। उसका कद तो मुझे नहीं मालूम मिस्टर होम, मगर वह उस हिंदुस्तानी से तो लंबा है, लेकिन गिल क्रिस्टल जितना लंबा नहीं, शायद 5 फुट 6 इंच के करीब रहा होगा। यह जानना मेरे लिए ज़रूरी था, होम्स ने कहा। और मिस्टर सोमेश, अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ, गुड नाइट। अनायासा यह सुनकर लेक्चरर बुरी तरह चौंक गया। यह क्या कह रहे हैं मिस्टर होम, वह निराशा से विचलित स्वर में बोला। आप इस तरह अधूरा काम छोड़कर नहीं जा सकते, जहाँ मेरी पोजीशन को तो समझने की कोशिश कीजिए। कल एग्जाम है और मुझे आज रात कोई ना कोई निश्चित निर्णय लेना है। अगर प्रश्न पत्र वाकई लीक हो गया तो मुझे कल का एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए इस किस्से का स्थिति जैसी है फिलहाल इसे ऐसे ही रहने दो, होम्स ने उसे बोलने का मौका दिए बिना कहा। मैं कल सुबह जल्दी आऊँगा और इस मामले पर बात करूँगा, मुमकिन है तब तक मैं कोई रास्ता निकालने में कामयाब हो जाऊँगा, मगर फिलहाल आप कोई निर्णय मत लीजिए, ऐसे रहिए जैसे कुछ घटित ना हुआ हो। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, बस यह समझ लीजिए मिस्टर होम्स कि मुझे बस आपका ही भरोसा है। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, मैं वह काली मिट्टी और पेंसिल के छिलके अपने साथ लिए जा रहा हूँ। जिस समय हम लोग उस इमारत से बाहर निकलकर कोर्ट यार्ड के अंधेरे में आए तो हमने एक बार फिर खिड़की की ओर देखा। वह हिंदुस्तानी अभी भी अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था, बाकी दोनों अपनी खिड़कियों में से दिखाई नहीं दे रहे थे। कहो वाटसन, तुम क्या सोचते हो? जैसे ही हम मुख्य रास्ते पर पहुंचे तो होम्स बोला, यह केस बिल्कुल ताश के तीन पत्तों जैसा है ना? यह ताश के पत्तों के बजाय तीन आदमी हैं, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तुम अपना दिमाग लगाओ, तुम्हारे ख्याल से इन तीनों में से कौन हो सकता है? सबसे ऊपर की मंजिल वाला वह बेहुदा और बदमिजाज आदमी सीधा सख्त तो उसी पर आता है, लेकिन वह हिंदुस्तानी भी कुछ धुना सा लग रहा था। आखिर वह इतनी देर से अपने कमरे में इधर उधर क्यों घूम रहा है? यह कोई खास बात नहीं, बहुत से लोग जब किसी चीज़ का रट्टा लगाकर अपने दिमाग से उसे याद करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे ही चहलकदमी करते हैं। लेकिन वह हमें बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। तुम भी उसी वक्त ऐसी नज़रों से देखते अगर तुम अपने कमरे में अगले दिन के इम्तिहान की तैयारी कर रहे होते तो कुछ अजनबी अचानक तुम्हारे कमरे में घुसकर उस वक्त तुम्हारा टाइम बर्बाद करते जबकि एक एक क्षण तुम्हारे लिए कीमती था। नहीं, मुझे इसमें कोई खास बात नज़र नहीं आती। पेंसिल और चाकू वगैरह सब चीज़ें संतोषजनक थी, लेकिन उस आदमी ने मुझे उलझन में डाल रखा है। किसने? अरे उसी नौकर मिनिस्टर ने। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस मामले में उस पट्टे का क्या रोल है। मुझे तो लगता है कि वह बेहद भला और ईमानदार आदमी है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, और यही बात मेरे लिए सबसे बड़ी उलझन बनी हुई है कि एक बेहद ईमानदार आदमी ने आखिर क्यों लोगो स्टेशनरी की दुकान दिखाई दे रही है। आओ हम अपनी खोज वहीं से शुरू करते हैं। उस छोटे से नगर में स्टेशनरी की कुल चार दुकानें थीं जो कुछ ठीक ठाक सी थी। होम्स ने बारी बारी से हर एक के सामने वे पेंसिल के छिलके पेश किए और वैसे ही पेंसिल खरीदने की मंशा जाहिर की। दुकान के मालिक ने यही कहा कि यह आम पेंसिलों से कुछ बड़ी पेंसिल है जिसे वे अपने स्टॉक में नहीं रखते, ऑर्डर मिलने पर मंगा कर दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकला, मगर इससे मेरा दोस्त निराश नहीं हुआ। उसने एक लापरवाह से मुस्कुराहट के साथ अपने कंधे झटक दिए। कोई फ़ायदा नहीं वाटसन, वह बोला, हमारी यह कोशिश भी बेकार गई, हमारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इस सुराग के बिना इस मामले का हल कर लूँगा। लो इस सारे चक्कर में तो रात के 9 बज गए, मकान मालिक खाना लिए हमारे लौटने का इंतजार कर रही होगी। अब तुरंत घर चलो और खाने से पहले उसकी गर्मा गर्म डांट खाओ। उसके बाद उस तारीख में होम्स ने उस विषय पर कोई चर्चा नहीं की, हालांकि खाना खाने के बाद वह देर रात तक अपने विचारों में खोया रहा। अगली सुबह 8 बजे के करीब मैं टॉयलेट से निकल कर बाहर आया तो वह मेरे कमरे में प्रविष्ट हुआ। चलो वाटसन, हमें फौरन सेट ल्यूक कॉलेज चलना है, वह आते ही बोला। क्या तुम आज नाश्ते का लालच छोड़ सकते हो? बिल्कुल छोड़ सकता हूँ। चलो फिर, सोमेश उस वक्त बुरी तरह बौखलाया हुआ होगा, उसे जल्दी से जल्दी कुछ तसल्ली देना ज़रूरी है। उसे तसल्ली देने लायक कुछ है भी तुम्हारे पास? शायद है, यानी तुम किसी नतीजे पर पहुंच चुके हो। हाँ मेरे प्यारे वाटसन, मैं इस रहस्यमय केस की गुत्थी को सुलझा लिया है। ऐसा कौन सा नया सुराग तुम्हारे हाथ लग गया? मैंने आश्चर्य के साथ उसे पूछा। और वह सुराग हाथ लगा भी तो कैसे? अरे भाई, मैं ऐसे ही तो सुबह 6 बजे अपना बिस्तर छोड़कर बाहर नहीं निकल गया, वह धीरे से मुस्कुराता हुआ बोला। 2 घंटे की कड़ी मेहनत और 5 मील लंबी यात्रा के बाद कुछ हासिल हुआ, यह देखो। तभी उसने अपना हाथ मेरे आगे फैला दिया। उसकी हथेली पर काली मिट्टी के ढेले जैसे 3 छोटे छोटे से पिरामिड रखे हुए थे। ये क्या, कल तो तुम्हारे पास 2 ही थे, ये अचानक तीसरा कहाँ से आ गया? मैंने एकदम चौंक कर पूछा। तीसरा आज सुबह मिला है, और मैं समझता हूँ कि यह सोचने में कोई बुराई नहीं कि तीसरे का उद्गम स्थान भी वही है जो पहले 2 का है। क्यों वाटसन, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? चलो चलते हैं और अपने दोस्त सोमेश की चिंता दूर करते हैं। बेचारा सोमेश उस समय बेहद ही सोचनी और घबराई हुई हालत में था। वह बेचारा अभी भी उस उलझन में फंसा हुआ था कि कुछ घंटों से ही परीक्षा शुरू होने वाली थी, और वह क्या करे, क्या एग्ज़ाम को कैंसिल करे, सच्चाई को सबके समक्ष उजागर कर दे या फिर चुप रहे और अपराधी को इस बहुमूल्य स्कॉलरशिप की परीक्षा में शामिल होने का मौका दे। उसके मानसिक संताप का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता था कि वे हमें देखते ही अपने हाथ फैलाता हुआ होम्स की ओर दौड़ा। अरे ओह गॉड, आप आ गए, मैं तो डर ही रहा था, कहीं निराश होकर आपने इस केस को पल्ला तो नहीं झाड़ दिया। अब बताइए मैं क्या करूँ, क्या इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए? नहीं नहीं एग्जाम कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे अपने निर्धारित समय पर शुरू कीजिए। लेकिन वह बदमाश, वह एग्ज़ाम में नहीं बैठेगा। तो क्या आपने उसका पता लगा लिया? शायद। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो इस मामले की भनक पब्लिक स्कूल तो ना लगने पाए, तो हमें कुछ विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक प्राइवेट और कोर्ट मार्शल का आयोजन करना पड़ेगा। तुम उधर रहो सोमेश, और वाटसन तुम इधर। मेरा ख्याल है कि जब हम अपराधी के दिल में दहशत पैदा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है, अब घंटी बजाई जाए। घंटी की आवाज़ सुनते ही बेनिस्टर अंदर आया, और हम लोगों की अदालत को देखकर वह भय से आश्चर्यचकित के मारे चीर गया। दरवाज़ा बंद कर दो, होम्स ने कहा। हाँ तो बेनिस्टर, अब बताओ कि कल वाले किस्से की सच्चाई क्या है। सुनते ही बेनिस्टर का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ सर, वह बोला। कोई बात ऐसी रह गई है जो तुमने बताना भूल गए? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है तो फिर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। जब तुम उस कुर्सी पर जाकर बैठे तो क्या उस समय तुम किसी ऐसे सबूत को छुपाने की कोशिश कर रहे थे जिससे यह पता चलता कि कमरे में कौन आया है? यह सुनते ही मिनिस्टर का चेहरा फक पड़ गया। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। घबराओ मत, यह सिर्फ एक सवाल है, होम्स ने कोमल स्वर में कहा, और मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं। अपने इस सवाल को साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन यह बात संभव सी लगती है, क्योंकि जैसे ही मिस्टर सोमेश यहाँ से रवाना हुए तुमने बेडरूम में छुपे आदमी को बाहर निकाल दिया। वहाँ कोई आदमी नहीं था सर, मिनिस्टर ने अपने सूखे होठों पर जवान फेरते हुए कहा। यह तो बड़े अफसोस की बात है मिनिस्टर, अब तक शायद तुम सच बोलते रहे, लेकिन अब मुझे मालूम है कि तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। अंदर कोई आदमी नहीं था सर, मिनिस्टर के स्वर में ही नहीं चेहरे पर भी रुखाई के भाव साफ परिलक्षित हो रहे थे। झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं मिनिस्टर। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कमरे में सच में कोई नहीं था। इसका मतलब है कि तुम हमें कोई नई जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन फिलहाल तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगे, उधर बेडरूम के दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाओ। अब सोमेश, तुम जरा गिलक्रिस्ट के कमरे के तक जाने की तकलीफ करो, उसे बुला कर दे आओ। थोड़ी देर बाद शिक्षक अपने विद्यार्थी के साथ लौट आया। वह एक लंबे और खूबसूरत से शरीर का मालिक था, जिसमें चुस्ती फुर्ती के साथ साथ चपलता भी कूट कूट कर भरी हुई थी। उसकी परेशान सी नीली आंखों में एक एक करके हमने देखा, और अंत में उसकी नज़रें दूर कोने में बेडरूम के दरवाजे के पास खड़े बनिश्चर पर जा टिकी। जरा दरवाज़ा बंद कर दो, होम्स ने कहा। हाँ तो मिस्टर क्रिस्टन, हमें यहाँ बिल्कुल एकांत में है, और जो भी बात यहाँ होगी उसका एक शब्द बाहर नहीं जाएगा, इसलिए हम दोनों एक दूसरे खुलकर बातचीत कर सकते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि मिस्टर क्रिस्ट की तुम्हारे जैसे इज्जतदार नौजवान ने कल जैसी घटिया हरकत क्यों की। सुनते ही गिलक्रिस्ट लड़खड़ा सा गया और नफरत भरी दृष्टि के साथ बनिस्टर को देखने लगा। नहीं नहीं मिस्टर क्रिस्टन, मैंने कुछ नहीं बताया, बेचारा बनिस्टर चिल्लाया। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं बताया, एक भी लफ्ज मैं नहीं बोला। मगर अब तो बोल पड़े तुम, होम्स ने मुस्कुरा कर कहा। और फिर क्रिस्टर जोर देखता हुआ बोला, हाँ भाई, इतना तो तुम समझ गए होगे कि मिनिस्टर ने इतना भर बोलने से ही तुम्हारी पोजीशन बहुत ख़राब हो गई है। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो। एक क्षण तो गिलक्रिस्ट ने अपने कांपते शरीर को संभालने की कोशिश की, मगर अगले ही क्षण वह मेज के निकट उकड़ू सा बैठ गया और अपने चेहरे को हाथों से छिपा कर बच्चों की माने सुमकने लगा। बस बच्चे बस, अपने आप को संभालो, होम्स ने उसे संतावना देते हुए कहा। गलती इंसान से ही होती है, कोई तुम्हें निर्मम अपराधी तो कह नहीं सकता। शायद यह बेहतर होगा कि मैं खुद मिस्टर सोमेश को बताऊं कि कल यहाँ क्या कुछ कैसे घटा। तुम कहीं लगे कि तुम कुछ गलत कह रहा हो तो तुम बीच में मुझे टोक देना, ठीक है ना? नहीं नहीं, जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं, बस सुनते रहो और इस बात पर यकीन रखो कि मैं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। मिस्टर सोमेश, जब तुमने मुझे बताया कि प्रश्न पत्रों के प्रूफ के आने के बारे में किसी को नहीं मालूम, यहाँ तक कि बेनिस्टर तक को भी कोई जानकारी नहीं थी, तभी से इस केस ने मेरे दिमाग को निश्चित शेप लेनी शुरू कर दी थी। प्रिंटर के बारे में कुछ कहना बेकार है, क्योंकि वह प्रश्न पत्रों को अपने ऑफिस से ही देख सकता था। उस हिंदुस्तानी स्टूडेंट को भी शक के घेरे से बाहर करना होगा, क्योंकि मिस्टर सोमेश के मुताबिक पेपर्स रोल किए हुए थे। और इस असंभव से संयोग के बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी है कि किसी आदमी ने कमरे में घुसने का दुस्साहस किया हो और उसे बाई चांस वहाँ प्रश्न पत्रों के प्रूफ रखे हुए मिल गए हो। मैंने इस बात को भी दिमाग से निकाल बाहर कर दिया है। सिर्फ एक ही बात बचती है, जो आदमी कमरे में अंदर दाखिल हुआ उसे यह जानकारी कैसे मिली। जब मैं तुम्हारे यहाँ आया तो मैंने खिड़की का निरीक्षण किया। तुमने यह समझा था कि मैं यह सोचने की बेवकूफ़ी कर रहा हूँ कि सामने कितनी इमारत की आंखों के सामने कोई दिन दहाड़े उजाले में खिड़की के रास्ते घुसने का दुस्साहस करेगा। ऐसा सोचना सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं बल्कि कोरी मूर्खता थी। मैं तो यह भापने की कोशिश कर रहा था कि इधर गुजरने वाला कोई आदमी अगर खिड़की से अंदर झाँकने की कोशिश करे तो उसका कद कितना होना चाहिए। मेरा कद 6 फीट है और मुझे भी खिड़की से अंदर झांकने के लिए अपने पंजों पर उचकना पड़ा था। इसका साफ मतलब था कि 6 फीट से कम कद के व्यक्ति के लिए खिड़की से अंदर झांकना मुमकिन नहीं था। इसलिए मुझे इस नतीजे पर पहुंचने में कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई कि तुम्हारे इन 3 स्टूडेंटों से अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा लंबे कद का है तो उस पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। कमरे में घुसकर मैंने तुम्हें साइड टेबल के बारे में पूछा था। मैंने सेंटर टेबल का निरीक्षण किया था और कुछ नहीं पाया। बातों बातों ने तुमने गिलक्रिस्ट के बारे में बताया कि वह एथलीटी भी है, कई खेलों के साथ लंबी कूद में भी हिस्सा लेता है। बस उसी क्षण सारा नक्शा मेरे दिमाग में साफ हो गया। अब बस तुम अपने निष्कर्ष के समर्थ के लिए कुछ ज़रूरी सबूत चाहिए, वे भी मुझे जल्दी ही मिल जाएंगे। जो भी हुआ वह इस प्रकार है। यह एथलेटिक नौजवान प्लेग्राउंड के दिन के 3रे पहर कूदने की प्रैक्टिस कर रहा था। वह अपने जंपिंग शूज को लटकाए हुए वापस लौट रहा था। तुम्हें ध्यान होगा कि वह जंपिंग शूज में उछाल की सहायता देने के लिए तेज नुकीली नोक सी बनी होती है। जैसे ही यह तुम्हारी खिड़की के पास से गुजरा तो इसने अपने लंबे कद के कारण तुम्हारी मेज पर रखे हुए प्रूफ देख लिए। उससे पहले शायद इसने प्रिंटर को भी बाहर जाते देख लिया है, इसलिए उसे यह अनुमान लगाने की कोई दिक्कत नहीं हुई कि वे क्या हो सकते हैं। फिर भी कोई नुकसान ना होता, मगर तुम्हारे नौकर की असावधानी के कारण दरवाजे की चाबी लगी रह गई जिससे इतना वहां से गुजरते समय देख लिया। बस उसे देखते ही उसका जी अचानक ही ललचा गया और वह कमरे में घुस गया। वहाँ उसे वे प्रूफ रखे दिखाई दिए। बस फिर तो उसने उस मौके से फ़ायदा उठाने का फैसला कर लिया। अपने जंपिंग सूज इसने मेज पर रखे, लेकिन वह क्या चीज़ थी जो तुमने कुर्सी पर रखी थी? दास्ताने थे, गिलक्रिस्ट ने जवाब दिया। होम्स ने एक विजेता की तरह बनिस्टर की ओर देखा और फिर आगे बोला, इसने अपने दास्ताने कुर्सी पर रखे थे और प्रूफ भी एक एक पर्ची उठा ली और उसकी नकल करने लगा। उसने सोचा था कि मिस्टर सोमेश मेन गेट से आएंगे और वह देख लेगा, मगर जैसा कि हम सब जानते हैं कि वह बाजू के गेट पर से लौट कर आए, इसलिए उसे तब तक पता ना चल सका जब तक कि अचानक दरवाजे पर आहट ना हुई। भाग निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए अपने जूते उठाए और बेडरूम में घुस गया। जल्दबाजी में दस्ताने व कुर्सी पर ही भूल गया। तुमने नोट किया होगा कि मेज पर लगे चमड़े के पहले हल्की सी खरोच और फिर सीधा कटाव था, जिसका रुख बेडरूम के दरवाजे की ओर है, जिससे साबित होता है कि जूते उस दिशा में खींचे गए थे और अपराधी वहीं छुपा होगा। जूते की किसी नोक से चिपटी मिट्टी ढीली होकर मेज पर गिर गई। नोक की वजह से उसका पिरामिड जैसा आकार बन गया। दूसरा नमूना ढीला होकर बेडरूम में गिर गया। मैं यह भी बता दूं कि आज सुबह ही एथलेटिक प्ले ग्राउंड में गया था। वहाँ की जंपिंग पिट में काली नरम मिट्टी इस्तेमाल की जाती है, जिस पर लकड़ी का बारीक बुरादा इसलिए बिखेरा जाता है ताकि खिलाड़ी फिसलने ना पाए। जो कुछ मैंने कहा वह सब सच है ना मिस्टर गिलक्रिस्ट? गिलक्रिस्ट धीरे से सीधा हुआ। जी हाँ, यह सब सच है, वह बोला। तुमने अपनी सफाई में कुछ कहना है? मिस्टर सोमेश ने उससे पूछा। इस भेद के खुल जाने की वजह से मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि बयान नहीं कर सकता, गिलक्रिस्ट ने शर्मिंदगी के स्वर में कहा। यह एक लेटर है मिस्टर सोमेश, जो मैंने अब सारी रात बेचैनी गुजारने के बाद आज सुबह ही लिखा है। यदि यकीन मानिए, यह लेटर मैंने अपना अपराध पकड़े जाने से पहले ही लिखा है। इसे आप पढ़कर देख लीजिए। इसमें मैंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मैंने एग्जामिनेशन में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया है और मुझे रोडेशियन पुलिस में नौकरी मिल गई है और मैं फौरन साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो रहा हूँ। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि गलत ढंग से प्रश्न पत्र को देख लेने के बावजूद भी तुमने उसका कोई लाभ नहीं उठाया, मिस्टर सोमेश ने कहा। लेकिन तुमने अचानक अपना इरादा कैसे बदल लिया? इस आदमी की वजह से, गिलक्रिस्ट ने बैरिस्टर की ओर इशारा करते हुए कहा। इस आदमी ने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब बोलो बैरिस्टर, होम्स ने कहा, मैंने तो पहले ही अनुमान लगा लिया था कि तुमने ही इस नौजवान को वहाँ से बाहर निकाला होगा, क्योंकि बाद में तो सिर्फ तुम ही यहाँ रह गए थे। तुमने इसे बाहर निकाला और ताला लगा कर चल दिए, लेकिन इस मिस्ट्री का आखिरी पॉइंट तुमने खोलना पड़ेगा। तुमने इस नौजवान की मदद क्यों की? बहुत मामूली सी बात है सर, अगर आप इसे जानते होते, मिनिस्टर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अपनी समस्त बुद्धिमानी और चतुराई के बावजूद भी इस मामूली बात को जानना आपके लिए असंभव था। एक ज़माना था हुजूर, जब मैं इस नौजवान के पिता सर जावेद क्रिस्टर के यहाँ बटलर की नौकरी करता था। जब अपनी धन संपत्ति को घुड़दौर में हार कर मैं बुरी तरह बर्बाद हो गया तो मैंने मजबूरी में कॉलेज की नौकरी कर ली। मगर मैं अपने पुराने मालिक को नहीं भूला, क्योंकि वह एक बहुत अच्छे आदमी थे। इसलिए पुराने दिनों की वजह से मैं उनके बेटे का खास ध्यान रखता था। कल उस हंगामे के बाद जब पूछताछ के लिए मुझे उस कमरे में बुलाया गया तो मेरी नज़र मिस्टर ग्लिस्टर के भूरे दास्तानों पर पड़ी कि कुर्सी पर रखे हुए थे। मैं उन दास्तानों को देखते ही समझ गया कि उनके वहाँ होने का मतलब भी समझ गया, मगर मिस्टर सोमेश ने उन्हें देख लिया होता तो सारा खेल ख़त्म हो गया होता। मैं उस कुर्सी पर जा बैठा और तब तक नहीं हिला जब तक कि मिस्टर सोमेश आपसे मिलने के लिए यहाँ से रवाना नहीं हो गए। तब बेचारे मेरे छोटे मालिक बाहर आए, जिन्हें मैंने अपनी गोद में खिलाया था। उन्होंने मेरे सामने सब कुछ स्वीकार कर लिया। क्या पुराना नौकर होने के नाते मेरा यह फ़र्ज नहीं बनता था हुजूर कि मैं उसकी मदद करके उन्हें बचाऊं? सो मैंने उनकी मदद की और साथ ही उनके स्वर्गवासी पिता के नाम पर मैंने इन्हें यह भी समझाने की कोशिश की कि इस तरह की गलत हरकतों से कोई खास फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। मुझे खुशी है कि मेरी बात इनकी समझ में आ गई थी। अब क्या अब भी मुझे सब के लिए आप दोषी मानेंगे सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, होम्स ने अपने पैरों पर उछलते हुए बड़े सपाक के साथ कहा, तुम एकदम निर्दोष हो। अच्छा तो मिस्टर सुमित, मैं जहाँ तक समझता हूँ तुम्हारी ये छोटी सी समस्या का हल हो गया है। अब हमें चलना चाहिए क्योंकि घर का नाश्ता हमारा इंतज़ार कर रहा है। चलो वॉटसन, चलते हैं। और हाँ यंग मैन, मुझे यकीन है कि रोडेशिया में एक उज्ज्वल भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक बार तो तुम फिसल कर गिर पड़े, लेकिन अब देखना है कि भविष्य में तुम कितना ऊंचा उठ सकते हो। फिर हम लोग ने विदा लेकर वहाँ से बाहर निकल गए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।